कर्मयोग बताया, कर्म का आधार और विशेषताएं बताई कि इस कर्म यानी इस कर्म माना यह स्वधर्म पर किया गया कर्म, स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म यानी ज्ञान के आधार से, प्रेम के आधार से, शांति के आधार से जो भी तुम कर्म करेगा वो तुझे कर्मों के बंधन में नहीं बांधेगा और कर्म के बंधन से तुम छूट जाएगा। कर्म का बंधन कब बनता है? जब अवगुणों के वश हो जाते हैं तब बंधन बनता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, स्वार्थ, ये सब बातें जो है ये कर्म का बंधन बांधता है। स्वधर्म जो है उसके आधार पर तो जो कर्म करेगा वो बंधन नहीं बांधेगा, छूट जाएगा उस बंधन से भी। फिर कहा कि ये स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म जो है इसमें बीज का नाश नहीं होता है। वो इतना पावरफुल कर्म है कि उसमें बीज का नाश नहीं होता है और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं उसको नष्ट करने का। और इस कर्म से, यह स्वधर्म के आधार पर जो किए गए कर्म है, इस कर्म से संपादित धर्म जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी उद्धार कर देगा। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा भय कौन सा होता है? मृत्यु का भय है ना, तो उस भय से भी तुम्हारा उद्धार कर देगा, तुम्हें उससे भी फ्री कर देगा। लेकिन इसमें सिर्फ निश्चयात्मक बुद्धि से कर्म करना होता है। कॉन्फिडेंस हो, फेथ हो, और फेथ के साथ ये स्वधर्म के आधार पर कर्म करो। ये नहीं कि पता नहीं मैंने शांति से कर्म किया तो लोग मेरा एडवांटेज लेंगे, मैंने इस रीति से प्रेम से ये बात कही तो लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं, इसमें डाउट्स नहीं होना चाहिए। निश्चयात्मक बुद्धि से कर्म करो तो विजय तुम्हारी है। तो कर्म कैसे करना ये भी भगवान बताते हैं। और फिर भगवान कहते कर्म करने पर तेरा अधिकार है फल में नहीं, माना फल की अपेक्षा लेकर कर्म नहीं करो। लेकिन फल तो क्या है, एक परछाई के समान है, पीछे पीछे आती रहेगी। तुम कर्म करते जा स्वधर्म के आधार पर, होगा नहीं होगा ये डाउट्स नहीं क्रिएट करो। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल तो अपने आप पीछे आना ही है। लेकिन इसमें दो बातों से बहुत ध्यान रखना है, आसक्ति और संग दोष। ये हमारे गुण डगमगा क्यों जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा क्यों जाता है, विल पावर हमारा टूटता क्यों है जब संग दोष में आ जाते हैं। किसी ने बातें ऐसी डिमोटिवेट करने वाली कह दी, संग ही ऐसा है डिमोटिवेट करने वाला। आसक्ति ऐसी चीज है, आसक्ति में पहले जोड़ देंगे और फिर वो आसक्ति भय उत्पन्न कराती है। इसलिए भगवान कहते हैं ये दो बातों से सावधान, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर निष्काम कर्म कर, यही समत्व भाव योग कहलाता है। ये तुम्हारी बुद्धि को बैलेंस स्टेट में रखेंगी है ना, और ये बैलेंस स्टेट अगर होगा तो तुम बस आगे बढ़ता ही जाएगा, पीछे मुड़ने की बात ही नहीं है। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण करता है जो, कौशल ही योग है। यही कौशल है, एक प्रकार की एफिशिएंसी है आपकी, और ये एफिशिएंसी योग है, यही सफलता को प्रदान कराती है। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी तब तो योग की पराकाष्ठा का फल अमृत पद को प्राप्त करेगा। इसलिए कहा युद्ध और योग दो बातें ही भगवान ने गीता में सिखाई है। लेकिन युद्ध और योग अगर ग्रॉस लेवल पर देखा जाए तो दोनों बहुत अलग अलग दिशा में है। लेकिन अगर बहुत ऊंचे स्तर पर देखा जाए, मानसिक स्तर पर देख, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं कि जहां योग करेंगे वहीं युद्ध होगा, और युद्ध में अगर तुम बुद्धि को विचलित होने से बचा सकेंगे तो योग की पराकाष्ठा की स्थिति को प्राप्त कर लेगा, उस अमृत पद को प्राप्त कर लेगा। और फिर स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताए कि जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण आसक्तियों को त्याग देता है तब वह आत्म से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ कहा, प्रज्ञ माना बुद्धि, स्थिर माना स्टेबल, स्टेबल इंटेलेक्ट जिसका रहता है तो वह आसक्तियों से का त्याग करके आत्म में ही आत्म से ही आत्म में संतुष्ट यानी सेल्फ सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है। और जिसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन जीवन में प्राप्त हो जाए, आत्म संतुष्टि जिसको प्राप्त हो जाए, वह स्थिर बुद्धि वाला आत्म तृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। फिर अर्जुन का एक सवाल है कि ये बुद्धि हमारी विचलित क्यों हो जाती है, ज्ञान की पराकाष्ठा क्यों नहीं आती है। तो भगवान बताते हैं बहुत सुंदर कि विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष, विषय माना विषय विकार, विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है, उसके वश हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, डिजायर्स अंदर में क्रिएट होती है आसक्ति से, और फिर अगर डिजायर्स में पूर्ति नहीं हुई, कामना पूर्ति में व्यवधान आया तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से फिर क्या होता, अविवेक यानी वो ज्ञान समाप्त हो जाता, विवेक आध्यात्मिक विजडम जो है वो समाप्त हो जाती है। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, मेमोरी पावर इफेक्ट हो जाती है, और स्मरण शक्ति भ्रमित हो गई तो स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड खत्म हो जाता है। अतः निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा जाता है। इसलिए कर्म तुम करो और उसमें अगर स्वधर्म के आधार पर कर्म करो तो तुम्हारी बुद्धि को कॉन्सेंट्रेशन सहज मिल जाएगा, सहज हो जाएगा, योग अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर कर्म के अंदर स्वधर्म के आधार पर कर्म नहीं है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, विषय विकारों का चिंतन करने लग जाता है और फिर वो मार्ग के ऊपर वो चलने लगता है। और इस दूसरे अध्याय के अंत में भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है कि योग साधना रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती है, उसके अंतकरण में भाव नहीं होता है और भाव रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती है। भाव चाहिए योग करने के लिए, मन को ईश्वर में एकाग्र करने के लिए भाव जरूरी है। भाव रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती है, अशांत पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान है, इट्स द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिनिंग। योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान है। परेशान मन वाला व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है, अपनी आत्म उन्नति के प्रति उदासीन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसीलिए आत्म उन्नति जितनी व्यक्ति की होती है, स्वधर्म के आधार पर जब कर्म करता है तो बुद्धि योग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड भी बहुत अच्छी तरह से रहता है। तीसरे अध्याय में कुछ सवाल अर्जुन के हैं जो हमारे मन के अंदर भी है, इसीलिए कहा ये वर्तमान समय की ही एक सारी बात है। अर्जुन का सवाल है ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, ये हमारा भी सवाल आता है मन के अंदर कि भाई ज्ञान योग करना चाहिए कर्म योग करना चाहिए, दोनों बात भगवान कह रहे हैं। भगवान ने बहुत अच्छा उसका उत्तर दिया, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग, योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही है, कर्म करने बिगर व्यक्ति नहीं रह सकता है, चाहे वो ज्ञानी क्यों ना हो, ज्ञानी को भी कर्म करना पड़ता है, कर्म योगी को भी कर्म करना पड़ता है। कर्म अनिवार्य है, सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते। प्रकृति के गुण कौन से, यानी हमारे अंदर की प्रकृति के गुण सात्विक राजसिक और तामसिक। ये प्रकृति जिसकी जैसा स्वभाव होता है, जिसकी जैसी प्रकृति होती है, वैसे ही वो कर्म करता है। किसी की सात्विक प्रकृति होती है तो वो सात्विक कर्म करता है, किसी की तामसिक प्रकृति होती है तो वो तामसिक कर्म करता है। तो सभी मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन से सर्वथा अनासक्त होकर कर्मेंद्रिय से कर्म योग का आचरण करता है तथा अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति करता है, वही श्रेष्ठ है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे कर्मयोगी हो। लेकिन जहां आध्यात्मिक पुरुषार्थ में कर्म भी अच्छे हो और आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति करता है वही श्रेष्ठ है ना। तो कितना सुंदर और सटीक जवाब भगवान देते हैं। और फिर यहां तीसरे अध्याय में एक और बहुत सुंदर बात कही, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब लोग समझते हैं वो यज्ञ करना चाहिए, घी जौ तिल स्वाहा करना चाहिए, इसलिए वो यज्ञ करने लगते हैं। लेकिन भगवान कहते यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, जिससे यज्ञ पूर्ण हो इसके अतिरिक्त जो कुछ भी करते हैं वो बंधन है। तो वो यज्ञ माना क्या? यज्ञ माना ये जीवन, जीवन एक यज्ञ है। और जैसे यज्ञ के अंदर तीन चीजों को स्वाहा करते हैं, जौ तिल और घी। जौ लंबा होता है छिलके वाला, ये तन का प्रतीक है। तिल सूक्ष्म होता है, मन का प्रतीक है। और घी लिक्विड होता है, धन का प्रतीक है। जीवन के अंदर तन मन और धन, इसी से ही तो कर्म करते रहते सारा दिन। तन मन धन तीनों से ही कर्म होता रहता है। अब भगवान कहते यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, जिससे यज्ञ पूर्ण होता है उसके अतिरिक्त जो कुछ भी करो वो बंधन है। कितनी डेप्थ इसमें है, इस एक ही बात के अंदर, कि ये जीवन एक यज्ञ है जिसके अंदर तन मन और धन। लेकिन आज ये तीनों के द्वारा ही पाप भी होता है या पुण्य भी होता है। पहले के जमाने में जब जॉइंट फैमिलीज इकट्ठे रहते थे, दादा दादी पोते सब बच्चे साथ में रहते थे, तो संस्कार कैसे दिए जाते थे कि शाम का समय होता था, वो पोता छोटा होता है तो दादा कहता है अच्छा चलो पोते को लेके घूम के आते हैं। और घूमने के लिए जाते, कहाँ जाते थे? मंदिर में। और मंदिर में ले जाते थे और मंदिर में ले जाकर के हाथ जोड़ते थे। पोते को कहना नहीं पड़ता था, पोता देख करके वो भी हाथ जोड़ने लगता था। अगर दादा ने साष्टांग प्रणाम किया तो वो भी साष्टांग प्रणाम करता। और साष्टांग प्रणाम करने के बाद, उठने के बाद, वो दादा उसके हाथ में 10 पैसा पकड़ाता था दान पेटी में डालने के लिए। और वो बच्चा दान पेटी में 10 पैसा डाल करके इतना खुश होता था। दूसरे दिन जैसे ही शाम होने लगती थी, वो पोता क्या करता है? दादा की धोती खींचना शुरू करता है, चलो 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 चलो। अरे भाई कहाँ जाना है? तो हाथ जोड़ करके दिखाता है, वहां मंदिर जाना है। दादा अगर कहे अभी टाइम है तो भी कहता है नहीं चलो। पहले दिन सिखाया दादा ने, दूसरे दिन वो पोता खुद दादा की धोती खींचते हुए उसको लेके जाता है। और मंदिर जाकर के हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम करने के बाद फिर कहता है 10 पैसा दो, 10 पैसा दो, इसमें डालना है डालना है डालना है। जब तक उसको 10 पैसा नहीं देते हैं तब तक वो क्या करता है? हल्ला मचा देता है मंदिर में। 10 पैसा दे दिया तो डाल दिया। पहले दिन तन गया, धन गया, तो दूसरे दिन होते ही मन गया बच्चे का, तन गया और धन गया। जहां पहले दिन तन और धन जाता है, दूसरे दिन फिर मन, तन और धन तीनों ही जाने लगते हैं। ये पहले के समय में संस्कार दिए जाते थे, लेकिन आजकल न्यूक्लियस फैमिलीज हो गई, दादा दादी कहीं दूर गांव में रहते हैं, शहरों में आकर के बसने लगे, न्यूक्लियस फैमिलीज हो गई, बच्चों के लिए टाइम इतना नहीं होता कि भाई उनको मंदिर ले जाइए, वो पिता का अपना टेंशन होता है, वो क्या कहता है, जैसे ही थक करके घर में आता है और जेब में देखता है सिगरेट का पैकेट नहीं है तो बच्चे को कहता है जरा नीचे जाके सिगरेट का पैकेट लेके आओ। आज का संस्कार। और उस बच्चे को पैसा दिया, तन गया, उसके हाथ से धन गया, सिगरेट का पैकेट खरीदता है और वो लेकर के ऊपर आता है। दूसरे दिन उसका मन जाएगा, ये क्या होता है, मैं भी जरा पी के देख लूं, है ना, मैं भी पी के देख लूं। और इस तरह से धीरे धीरे वो संग में, छोटी उम्र में ही सिगरेट, शराब, ये आदतों में आ जाता है, है ना। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, यानी यज्ञ माना शुद्धिकरण जहां होता है। तो जीवन को शुद्ध रखने के लिए जो कर्म करते, जो क्रियाएं करते हैं, वही कर्म है, जिससे यज्ञ पूर्ण होता है, जिससे जीवन पूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी करते हो वो बंधन है, है ना। यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर कर्म का आचरण करो, क्योंकि जैसे ही अगर संग दोष में आया, एक बच्चा स्कूल में होता है, बहुत टेंशन हो गया, पढ़ाई में नर्वस हो गया, एकदम टेंशन हो गया, संघ वालों ने क्या कहा, संघ ने क्या कहा, अरे एक सिगरेट पी लेना, कुछ नहीं होता है, तेरा टेंशन ठीक हो जाएगा, एक शराब का घूंट पी ले, तेरे को कुछ नहीं होगा, तेरा टेंशन चला जाएगा। पहले दिन उसको दिया गया, पिया उसने, तो दूसरे दिन जैसे ही थोड़ा टेंशन शुरू होगा तो मन जाएगा, तन जाएगा, धन जाएगा। इसीलिए भगवान कहते, यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर कर्म का आचरण करो। प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ जिससे तुम लोगों का अनिष्ट नहीं होगा। देवी देवताओं को जब रचा गया, हमारे पूर्वज जिसके हम वंशज है, तो उसको कहा गया तुम इसके द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो। यह यज्ञ जिसमें तुम लोगों का अनिष्ट नहीं हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा, अगर यज्ञ शुद्ध यानी जीवन शुद्ध रहा तो। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, देवताएं माना दैवी संस्कारों को अपने जीवन के अंदर विकसित करो, उन्नति करो, अर्थात दैवी संस्कारों की वृद्धि करो। वे देवता लोग, वही दैवी संस्कार तुम लोगों की उन्नति करेंगे और आराध्य संबंधी भोगों को उपलब्ध करेगा। इसलिए देवताओं को कितना दिखाते हैं, सर्व बातों से संपन्न। तो दैवी संस्कारों की वृद्धि करने की बात है इस जीवन रूपी यज्ञ में, जिससे हमारा कभी अनिष्ट नहीं होगा और सभी भोगों को आपे ही सहज उपलब्ध कर सकेंगे। कितनी गहरी बात समाई, लोगों ने आज उसको स्थूल लेवल पर ले लिया और कुछ भी होता है यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। नया मकान में जाते हैं, वातावरण का शुद्धि करने के लिए यज्ञ करो, वो यज्ञ हजारों हो गए लेकिन फिर भी शुद्धि नहीं हुई। उस शुद्धिकरण करने के बाद भी उस मकान में रहने जाते हैं तो भी क्या होता है, टेंशन रोज आता है, लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश रोज होता रहता है। भावार्थ यह है कि जीवन रूपी यज्ञ की बात है, कि जीवन रूपी यज्ञ में दैवी संस्कारों की वृद्धि करो तो वो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, वो घर का वातावरण कैसा हो जाएगा, संघ दोष से अलग रहकर कर्म का आचरण उसमें करने की बात है। और फिर भगवान उसको कहते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, इसलिए लोग यज्ञ करते हैं। बरसात नहीं आई, यज्ञ करो। लेकिन गीता में अभी स्थूल लेवल पर यज्ञ करने की क्या बात करेंगे भगवान? क्या भगवान इतने ग्रॉस लेवल पर बात करेंगे? ये तो आजकल के लोग भी जानते हैं। भावार्थ ये है कि आत्मा को जो भोजन की जरूरत है, जो नरिशमेंट फॉर द माइंड, जिस नरिशमेंट से आत्मा को नरिश करना है, उसकी उत्पत्ति करने के लिए वृष्टि चाहिए। वृष्टि माना आशीर्वाद। इतने अच्छे कर्म करें हम जो आशीर्वाद स्वतः प्राप्त हो। वृष्टि यज्ञ से होती है, यानी आशीर्वाद तभी मिलेगा जब जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध रखेंगे। यह यज्ञ कर्म से ही उत्पन्न होने वाला है, अच्छे कर्म से ही उत्पन्न होने वाला है, और उससे ही ये पूर्ण होता है। और कर्म श्रेष्ठ करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान कहां से मिलेगा? तो कहा वेदों से। कर्म वेदों से उत्पन्न होता है, और वेद कहां से प्राप्त होगा? तो भगवान से प्राप्त होगा। इसलिए श्रीमद् भगवद् गीता को कहा जाता है कि ये वेदों का सार है, सारे वेद उसमें समाये हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता को इसीलिए महान कहा जाता कि अलग अलग वेद पढ़ने की भी जरूरत नहीं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता माना सारे वेदों का निचोड़ है, वेदों का सार है उसमें। भावार्थ यह है कि ईश्वर जो भी बातें कहता है उसका स्तर बहुत ऊंचा है, एक बहुत सूक्ष्म स्तर की बातें करते हैं। आज की दुनिया के लोगों को समझना उसको बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन जब उसको समझते हैं तो जीवन जीने की एक दिशा प्राप्त हो जाती है, एक मार्गदर्शन मिलने लगता है, और जीवन के कई प्रॉब्लम्स को हम स्वतः ही समाप्त कर सकते हैं।
खुद से पूछो क्या भगवान की मानते, मान भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते, धरती आकाश को जानते हो अगर ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते, ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते, प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो,